पृष्ठ संख्या 190, अध्याय 6, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। शिशु जब जन्म लेता है तो वह पूर्णतः निर्बल, निसहाय एवं आश्रित अवस्था में होता है। वह अपनी हर एक आवश्यकता के लिए दूसरों पर आश्रित रहता है। उसे जिस करवट लिटा दिया जाता है, वह उसी करवट में वैसे ही पड़ा रहता है। यदि उसकी देखरेख, लालन पालन उचित ढंग से नहीं किया जाता तो उसकी मृत्यु हो जाती है। अतः स्पष्ट है कि शिशु जन्म से ना तो सामाजिक प्राणी होता है, ना असामाजिक और ना ही समाज विरोधी। वह तो केवल एक जैविकीय प्राणी होता है, जिसे हम चाहें तो समाज निरपेक्ष प्राणी कह सकते हैं। परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, उसका संपर्क माता पिता, परिवार के सदस्यों तथा समाज के अन्य लोगों के साथ बढ़ने लगता है। उसमें सामाजिकता का विकास होने लगता है। विकास की पूर्णता प्राप्त करते करते वह एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। वह समाज द्वारा मान्य गुणों से सुशोभित हो जाता है। साथ ही वह सामाजिक संबंधों के जाल में इस तरह उलझ जाता है कि उसमें जीवन पर्यंत उलझा ही रहता है। सामाजिक संबंधों की यह परिधि उसे सामाजिक प्राणी बनाए रखती है। बालकों में सामाजिक गुणों का विकास एकाएक नहीं होता है, बल्कि कदम दर कदम बढ़ता है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। फिर इस विकास में पठार आता है, जिस मंद गति से विकास होता है, और फिर सामाजिक विकास में प्रतिगमन रिग्रेशन दिखाई देता है। इस प्रकार सामाजिकता का विकास क्रमिक विकास है, जो जीवन पर्यंत तक चलते रहता है। बालक समाज में रहकर माता पिता, साथियों, आसपास के लोगों, शिक्षकों एवं समाज के अन्य लोगों से देखकर सीखता है और उसे अपने जीवन में अपनाता है। सामाजिक विकास की परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट। नंबर एक, I.L. चाइल्ड के अनुसार, सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में उसके समूह के मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास होता है। सोशल डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस बाई विच एन इंडिविजुअल इज लेड टू डेवलप एक्चुअल बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ हिज ग्रुप। I.L. चाइल्ड। पृष्ठ संख्या 191। नंबर दो, सोरेनसन के अनुसार, सामाजिक विकास के अंतर्गत अपनी व दूसरों के साथ भली प्रकार चलने की बढ़ती हुई योग्यताओं, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने तथा अपने पैरों पर खड़ा होने की योग्यता है। नंबर तीन, हरलाक के अनुसार, सामाजिक विकास से तात्पर्य उस योग्यता को अर्जित करना है जिसके द्वारा सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार किया जा सके। सोशल डेवलपमेंट मीन्स एक्वायरेशन ऑफ द एबिलिटी टू बिहेव टू अकॉर्डेंस विद सोशल एक्सपेक्टेशन। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित व मान्य मूल्यों, दर्शनों, मानकों, अभिवृत्तियों, संस्कृतियों, परंपराओं आदि को सीखता है तथा उसी के अनुसार व्यवहार करता है। समाजीकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। सामाजिक विकास को समझने के लिए समाजीकरण की प्रक्रिया को समझना अति आवश्यक है। दरअसल समाजीकरण सामाजिक विकास का मूलभूत आधार है। यह बालक को समाज में रहने योग्य बनाता है। बालक समाज में रहकर ही क्षमा, दया, त्याग, बलिदान, सहयोग, सहिष्णुता, प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक गुणों को सीखता है और उसे पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करता है। विभिन्न विद्वानों ने सामाजिकरण को अपनी अपनी शैली में परिभाषित किया है। नंबर एक, H.M. जॉनसन के अनुसार, सामाजिकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति सामाजिक नियमों को सीखता है जो उसे समाज में रहने योग्य बनाता है और उसमें सहयोग की भावना का विकास करता है। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन विच इंडिविजुअल लर्न्स द सोशल रोल्स विच हेल्प हिम टू लिव इन सोसाइटी एंड हेल्प टू डेवलप कोऑपरेटिव फीलिंग्स अमंग द सोसाइटी। H.M. जॉनसन। नंबर दो, गिलिन एवं गिलिन के अनुसार समाजीकरण से हमारा अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह में एक सक्रिय सदस्य बनता है, समूह की कार्यविधियों में समन्वय स्थापित करता है, समूह की परंपराओं को ध्यान में रखता है तथा सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन करके अपने साथियों के प्रति सहन शक्ति की भावना का विकास करता है। सरल शब्दों में समाजीकरण का अर्थ है समाज के अनुसार रहना, समाज द्वारा बनाए गए राहों पर चलना तथा समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करना। सोशलाइजेशन मीन्स टू लिव एंड एडजस्ट अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में तीन बातें सम्मिलित हैं। नंबर एक, समाज द्वारा मान्य तरीकों के अनुसार व्यवहार करना सीखना, लर्निंग टू बिहेव इन सोशली अप्रूव्ड अवेज। नंबर दो, समाज द्वारा अनुमोदित भूमिकाओं को अपनाना, प्लेइंग सोशल रोल्स। नंबर तीन, सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ सोशल एटीट्यूड्स। प्रश्न संख्या 192। नंबर एक, समाज द्वारा मान्य तरीकों के अनुसार व्यवहार करना, लर्निंग टू बिहेव इन सोशली अप्रूव्ड वेज। प्रत्येक समाज की कुछ अपनी संस्कृतियाँ, परंपराएँ, रीति रिवाज, नियम, मूल्य एवं दर्शन होते हैं जिन्हें बालक को सीखना होता है और उसी के अनुसार व्यवहार करना होता है। बच्चे यदि समाज द्वारा अनुमोदित इन मानकों को सीखकर उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं तो समाज के लोग उसे पसंद करते हैं और समाज में उसे मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा एवं प्रशंसा मिलती है। अन्यथा बालक का सामाजिक समायोजन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। नंबर दो, समाज द्वारा अनुमोदित भूमिकाओं को अपनाना, प्लेइंग अप्रूव्ड सोशल रूल्स। सामाजिकरण प्रक्रिया की दूसरी महत्वपूर्ण बात है समाज द्वारा अनुमोदित भूमिकाओं को अपनाना। प्रत्येक समाज में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के लिए तथा बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग व्यवहार, प्रतिमान एवं भूमिकाएं होती हैं जिसके अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। इसे निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है। यदि एक औरत के बारे में देखें तो वह किसी की माँ, किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की पुत्री, किसी की ननद, किसी की भांजी, किसी की बहू, किसी की सास, किसी की चाची, किसी की भतीजी तो किसी की भाभी होती है। उसे अपनी इन भिन्न भिन्न भूमिकाओं को विभिन्न रिश्तों के साथ बखूबी निभाना होता है। जब वह दादी होती है तो उसे पोते के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इसे सीखना होता है और इसी तरह पोते को भी दादी के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए यह सीखना आवश्यक होता है। नंबर तीन, सामाजिकरण अभिवृत्तियों का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ सोशल एटीट्यूड। क्या है सामाजिक अपेक्षाएं, व्हाट इज सोशल एक्सपेक्टेशन। प्रत्येक समुदाय में बालकों से कुछ अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन एवं आशाएं, होप्स रखता है और यह चाहता है कि बालक उनकी अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करना सीखे। जैसे बालक से अपेक्षा की जाती है कि जब वह बड़ा होगा तो अपने माता पिता को सम्मान देगा, आदर करेगा, आत्मनिर्भर होकर धन अर्जित करेगा और बुढ़ापे की लाठी बनेगा। जब वे बीमार होंगे तो उनकी सेवा शुश्रूषा करेगा, मरणोपरांत उनका नाम रोशन करेगा और पारिवारिक दायित्व का वहन करते हुए लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा। इसी प्रकार बालक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह घर परिवार के कार्यों में हाथ बटाएगा, विद्यालय में अच्छा व्यवहार एवं आचरण करेगा, पढ़ाई में अव्वल रहेगा और विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर इनाम जीतेगा। विद्यालय में शिक्षक भी बालकों से यह आशा करते हैं कि वह पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनेगा, IIT, IIM जैसे उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़कर कुछ आविष्कार करेगा और देश का नाम रोशन करेगा। इसी प्रकार की आशाएं, प्रत्याशाएं विभिन्न समुदाय के लोग अपने अपने सदस्यों से करते हैं। पृष्ठ संख्या 193। मगर इन सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करना और उन पर खरे उतरना इतना आसान नहीं है। इन्हें पूरा करने में बालकों के समक्ष कई चुनौतियों एवं कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों एवं कठिनाइयों में से सबसे बड़ी चुनौती एवं कठिनाई तो यह आती है कि बालक सामाजिक अपेक्षाओं को अच्छी तरह से समझ नहीं पाता है। वह यह नहीं समझ पाता है कि समाज की क्या अपेक्षाएँ हैं। उनका कोमल मस्तिष्क यह समझने में अक्सर भूल कर जाता है कि समाज के कौन कौन सी अपेक्षाएं अच्छी हैं और कौन सी बुरी हैं, किसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए और किसे कम, किन अपेक्षाओं पर खरे उतरना चाहिए और किन पर नहीं, उसे किन किन समाज द्वारा अनुमोदित भूमिकाओं को किस सीमा तक अपनाना चाहिए। अतः बालक के सामने शंका, संशय और कन्फ्यूजन रहता है। ऐसी स्थिति में वह यह नहीं समझ पाता है कि उसे किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, फलतः उसका सामाजिक समायोजन गड़बड़ा जाता है। अक्सर यह देखा गया है कि बालक अपने परिवार एवं समाज के द्वारा मान्य मानदंडों के अनुरूप सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है तो परिवार और समाज उसे स्वीकार नहीं करता है। यह अलग बात है कि कुछ परिवारों एवं समूहों में यह छूट रहती है कि बालक अपने वैयक्तिक गुणों को भी बनाए रखे तथा समाज के द्वारा मान्य मूल्य एवं मानदंडों के अनुरूप भी बनाए रखे। इसी प्रकार किसी परिवार से यह अपेक्षा की जाती है कि बालक पहले समाज द्वारा मान्य मानदंडों एवं मूल्यों को अपनाए, फिर वह व्यक्तिगत गुणों का विकास करे। परंतु इतना तो तय है कि समाज बालक को तभी स्वीकार करता है जब वह समाज के साथ अनुरूपता स्थापित करता है। यदि बालक समाज के साथ अनुरूपता स्थापित करने में विफल हो जाता है तो समाज के लोग उसे बहिष्कृत कर देते हैं, अतः उसे सामाजिक बहिष्कार का दंश भोगना पड़ता है। सामाजिक विकास की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट। हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं कि बालकों में सामाजिक विकास रातों रात या एकाएक नहीं होता है, बल्कि यह अधिगम प्रक्रिया के द्वारा सीखने एवं अनुभवों को प्राप्त करने से होता है। सामाजिक विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कदम दर कदम बढ़ता है। बालकों के विभिन्न आयु स्तरों पर सामाजिक विकास में अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं। कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नांकित हैं। नंबर एक, प्रारंभिक सामाजिक अनुक्रियाएं, अर्ली सोशल रिस्पॉन्सेस। बालकों में सामाजिक विकास की नींव प्रारंभ से ही पड़ जाती है। जब बालक पैदा होता है तब वह ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक, बल्कि यह कह सकते हैं कि वह केवल एक जैविकीय प्राणी होता है जो पूर्णतः सामाजिक निरपेक्ष होता है। उसमें सामाजिक अथवा असामाजिक होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। वह शरीर से इतना कमजोर एवं निर्बल होता है कि उसे हर आवश्यकता के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, माता पिता के साथ ही वह परिवार के सदस्यों एवं समाज के अन्य लोगों के संपर्क में आता है और वह उनके प्रति कुछ अनुक्रियाएं प्रदर्शित करने लगता है। जैसे यदि बालक के हाथ से खिलौना छीन लिया जाए तो वह क्रोधित हो जाता है और रोने लगता है, जमीन पर लोटने पोटने लगता है। परंतु जब उसे वही खिलौना दे दिया जाता है तो वह तुरंत ही रोना बंद कर देता है। अतः अस्पष्ट है कि सामाजिक प्रतिक्रियाएं ही सामाजिक विकास की प्रारंभिक चरण है और यहीं से सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। पृष्ठ संख्या 194। नंबर दो, बालकों के साथ अनुक्रिया, सोशल रिस्पॉन्सेज टुवार्ड्स चिल्ड्रन। सामाजिक विकास में बालकों के साथ अनुक्रिया प्रतिक्रिया का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। बालक जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वह दूसरे बालकों के संपर्क में आता है, वह उनके साथ खेलता कूदता है तो उसे भिन्न भिन्न अनुभव प्राप्त होते हैं। वह अपने समूह के बालकों के साथ मित्रता स्थापित करता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है और उनका अनुसरण या नेतृत्व करने लग जाता है। उदाहरण के लिए, 6 माह का बालक दूसरे रोते हुए बालक को बड़े ही ध्यान से देखता है, तब उसके अंदर जिज्ञासा कम और द्वंद्व अधिक उठता है कि आखिरकार यह बच्चा रो क्यों रहा है। 1 वर्ष के बालक के हाथ से दूसरा बालक यदि खिलौना छीन लेता है तब वह बालक रोने लगता है। कभी कभी वह दूसरे बालक से खिलौना छीनने का भी प्रयत्न करता है। इस प्रयास में वह दूसरे बालक का बाल नोचने, मुंह नोचने, कपड़े खींचने जैसे कार्य भी करता है। इसी प्रकार यदि 7 से 8 माह के बच्चे के सामने ही यदि उसके माता पिता दूसरे बच्चे को गोद में लेकर प्यार करने लगते हैं तो वह मचलने लगता है ताकि माता पिता उस बच्चे को गोदी से उतार दें और उसे ही गोदी में उठा लें। जब बालक विद्यालय जाने लगता है तथा दूसरे बालकों के संपर्क में आता है तो उसका सामाजिक दायरा बढ़ जाता है। अब यही बालक अपने खिलौनों को दूसरे बालकों के साथ शेयर करके खेलता है। अब उसमें सहयोग एवं मित्रता की भावना का विकास होने लगता है। नंबर 3, सामाजिक प्रतिक्रियाएं। 3 से 4 वर्ष के बालकों में सामूहिकता का विकास होने लगता है। अब वह उम्र के बालकों के साथ रहना, खेलना, खाना पसंद करता है। यद्यपि तब उसका समूह छोटा होता है, इसी समय उसमें सहिष्णुता के गुणों का विकास तीव्रता से होता है। वह खेल खेल में ही मित्रता, सहिष्णुता, त्याग, बलिदान, सहयोग, नेतृत्व, प्रतिस्पर्धा आदि स्वस्थ गुणों को सीख जाता है। ये धनात्मक गुण ही बालक के बहुमुखी व्यक्तित्व विकास में सहायक सिद्ध होते हैं, जिससे उसका भविष्य सुंदर, सुखद और अच्छा बनता है। वह आगे चलकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। नंबर 4, समाज के साथ अनुक्रियाएं, रिस्पॉन्सेज टुवार्ड सोसाइटी। 4 से 5 वर्ष के बालकों का संपर्क अपने समूह के साथियों के बीच ही अधिक रहता है, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, अब उसका संपर्क समाज के दूसरे लोगों के साथ भी होता है। वह सामाजिक उत्सवों, शादी विवाह के कार्यक्रमों, पर्व त्योहारों एवं सामाजिक समारोहों में भाग लेने लगता है। वह समझने लगता है कि कौन कौन से व्यवहार समाज द्वारा मान्य हैं और कौन नहीं। जो व्यवहार समाज द्वारा मान्य नहीं होते हैं उसे वह छोड़ते जाता है और जो व्यवहार मान्य होते हैं उसे अपनाते रहता है। इस प्रकार वह सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करता है। सामाजिक प्रतिक्रियाओं के दौरान बालक में कई अन्य सामाजिक विशेषताओं का प्रादुर्भाव होता है, जो उसके सामाजिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। जैसे रोमन का 1, झगड़ा, क्रोध एवं मारपीट। बालकों में झगड़ा, क्रोध एवं मारपीट का गुण भी बचपनावस्था से ही पाया जाता है, मगर इसका विकास सामाजिक परिस्थितियों एवं परिवार के आचरण एवं व्यवहार पर निर्भर करता है। जैसे यदि 1 से 1.5 वर्ष के बालक के हाथ से खिलौना छीन लिया जाए तो वह क्रोधित हो जाता है और रोने चिल्लाने, जमीन पर हाथ पैर पटकने लगता है। जिस परिवार के सदस्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं उसमें आपसी वैमनस्य एवं द्वेष रहता है, तो उस परिवार में पलने बढ़ने वाले बालकों में भी ये गुण समाहित हो जाते हैं। फलतः बालक भी क्रोधी एवं झगड़ालु प्रवृत्ति का हो जाता है। पूर्व बाल्यावस्था में बालक अपने समूह के बालकों के साथ खेलता है। खेलते समय जब कोई बालक अपना रौब जमाता है तथा दूसरे बालक उसके रौब को नहीं मानते तथा उसके निर्देशों एवं प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करते तो संघर्ष की स्थिति प्रारंभ हो जाती है और वहीं से बालक झगड़ा एवं मारपीट करना सीख जाता है। परंतु यदि माता पिता बालकों को उचित प्रशिक्षण देते, उसे प्यार से समझाते हैं तो उसमें लड़ने झगड़ने की भावना का विकास कम ही होता है। रोमन का 2, सहानुभूति एवं सहिष्णुता, सिंपैथी एंड टॉलरेंस। लड़ाई झगड़ा एवं मारपीट जहां एक ओर अस्वस्थ सामाजिक गुण है, वहीं सहानुभूति एवं सहिष्णुता एक स्वस्थ एवं सकारात्मक गुण है। बालक न केवल अपने बाल मित्रों के साथ रहकर झगड़ा एवं मारपीट ही करना सीखता है, बल्कि उसमें सहानुभूति एवं सहिष्णुता का गुण भी विकसित होने लगता है। उदाहरणार्थ खेलते समय यदि किसी बालक को चोट लग जाती है अथवा गिर जाता है तो दूसरे बालक उसे प्यार से उठाते हैं, धूल झाड़ते हैं और सहानुभूति दर्शाते हैं। इसी प्रकार उसमें सहिष्णुता का गुण भी विकसित हो जाता है। जैसे यदि एक बालक खिलौने से खेल रहा होता है तो दूसरा बालक उसे खिलौने से खेलने देता है। प्रारंभ में सहानुभूति एवं सहिष्णुता का विकास परिवार के सदस्यों के प्रति ही रहता है, परंतु बाद में समाज के लोगों के प्रति भी होने लग जाता है। रोमन का 3, निषेधात्मकता, निगेटिविज्म। सामाजिक प्रतिक्रियाओं के अंतर्गत निषेधात्मकता का भी बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। बालक निषेधात्मकता अर्थात नकारात्मक व्यवहारों का प्रदर्शन तब करने लग जाता है जब उसकी इच्छा पूर्ति में बाधा उत्पन्न की जाती है अथवा जब वह किसी कार्य में तल्लीन है और उसमें बाधा पहुंचाई जाती है, तब बालक को मनचाहा खिलौना नहीं दिया जाता है अथवा उसे खेलने से रोका जाता है, तब वह नकारात्मक संवेगों का प्रदर्शन करने लग जाता है। उदाहरणार्थ, यदि खेलने में मग्न बालक के हाथ से उसका मनपसंद खिलौना छीन लिया जाता है तो वह रोने चिल्लाने लगता है, हाथ पैर पटकने लगता है तथा जमीन पर लोटने पोटने लगता है। वह क्रोध का प्रदर्शन इस प्रकार से करने लगता है ताकि उसे शीघ्रातिशीघ्र खिलौना मिल जाए। बड़े बच्चे निषेधात्मकता की स्थिति में तर्क करने लगते हैं तथा बड़ों की अवज्ञा करने लगते हैं। वे दूसरे बच्चों को मारने पीटने, गाली गलौज करने जैसी क्रियाएं भी करने लग जाते हैं। ऐसा व्यवहार बालक अपनी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए करता है। पृष्ठ संख्या 196, रोमन का नंबर 4, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन। प्रतिस्पर्धा भी सामाजिक प्रतिक्रियाओं की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण विशेषता है। यह बालक को प्रगति की ओर अग्रसर करती है। प्रत्येक बालक की यह हार्दिक इच्छा एवं दिली तमन्ना होती है कि वह पढ़ाई में अथवा खेल में अन्य बालकों से अव्वल रहे। इस कारण वे पढ़ाई में मन लगाते हैं, खेलकूद प्रतियोगिताओं में भी वह बढ़ चढ़कर भाग लेता है तथा उसमें अव्वल स्थान प्राप्त करने की भरपूर चेष्टा करता है। बालकों के जीवन में प्रारंभिक सामाजिक अनुभवों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली सोशल एक्सपीरियंसेस इन चिल्ड्रंस लाइफ। बालक अपने जीवन के प्रारंभिक काल से ही सामाजिक अथवा असामाजिक प्रतिमानों को ग्रहण कर लेता है, जिससे यह आसानी से पता चल जाता है कि बालक आगे चलकर सामाजिक बनेगा, असामाजिक बनेगा अथवा समाज विरोधी बनेगा। बालकों के सामाजिक अथवा असामाजिक बनने में परिवार का महत्वपूर्ण योगदान है। यदि परिवार का वातावरण सुखद, आनंददायक एवं प्रसन्नतादायी है तथा परिवार का वातावरण सामाजिक आकांक्षाओं प्रत्याशाओं के अनुसार रहा है तो बहुत कुछ संभावना है कि बालक बड़ा होकर सामाजिक प्राणी बनेगा और उसमें त्याग, बलिदान, सहिष्णुता, दया, एकता, सहयोग, सद्भावना जैसे स्वस्थ सामाजिक गुण विकसित होंगे। वह दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति बनेगा। परिवार का आकार, परिवार के सदस्यों का आचरण, चरित्र एवं व्यवहार भी बालकों के प्रारंभिक अनुभवों को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। बालक जिस परिवार में पलता बढ़ता है, उसे जिस प्रकार से पाला पोषा जाता है, शिक्षा दीक्षा दी जाती है, उसी प्रकार के अनुभव उसमें विकसित हो जाते हैं। यदि बालक को ऐसे परिवार में लालन पालन किया जाता है जहां आए दिन मारपीट, झगड़ा लड़ाई, गाली गलौज होते रहते हैं तो बालक में ये गुण विकसित हो जाएंगे। बड़ा होकर बालक भी इन नकारात्मक गुणों को सीख लेता है तथा असामाजिक गतिविधियों में शामिल हो जाएगा। इसके विपरीत, यदि बालक को ऐसे परिवार में पाला पोषा जाता है जहां उसे भरपूर प्यार मिलता है, परिवार के सदस्य उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उसे अच्छे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण हेतु भेजा जाता है तो बालक संस्कारवान बनता है। उसमें सामाजिकता का गुण विकसित हो जाता है। वह आत्मविश्वासी एवं स्वाभिमानी व्यक्ति बनता है तथा समाज की प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार करने लग जाता है। उसके भीतर स्वस्थ अभिवृत्तियों, दर्शन एवं मूल्य निर्मित होने लगते हैं। अच्छे गुणों के कारण वह अपने मित्रों के बीच भी लोकप्रिय हो जाता है। उसमें नेतृत्व का गुण विकसित हो जाता है और वह अपने समूह का नेता बनता है। प्रारंभिक सामाजिक अनुभवों का प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ अर्ली सोशल एक्सपीरियंसेस। नंबर 1, सामाजिक स्वीकार्यता का प्रभाव, इफेक्ट ऑन सोशल एक्सपेक्टेंस। बालक समाज एवं परिवार में जितना अधिक लोकप्रिय बनेगा, उसकी सामाजिक स्वीकार्यता उतनी ही अधिक होगी। यदि बालक कुशाग्र बुद्धि वाला, अनुशासित, हंसमुख एवं मृदुभाषी है तो उसे सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ जाती है, क्योंकि लोग उसे अधिक पसंद करते हैं तथा अपना मित्र बनाना चाहते हैं। वह जिन सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेता है और जिस तरह की भूमिका अदा करता है, लोग उसे बड़े ही चाव से देखते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। नंबर 2, व्यक्तित्व का विकास, इफेक्ट ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। प्रारंभिक सामाजिक अनुभवों का बालक के व्यक्तित्व विकास में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। बालक का मस्तिष्क एक खाली स्लेट की तरह होता है। इस पर जो कुछ भी लिख दिया जाता है वह स्थायी हो जाता है तथा व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। कहने का तात्पर्य है, बालक बचपन में जो कुछ भी सीखता है और जिस तरह के अनुभवों को प्राप्त करता है वह उसके जीवन पर्यंत काम आता है। इसलिए कहा जाता है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। यदि बालक की परवरिश ऐसे परिवार में हुई है जिसमें उसके लालन पालन में माता पिता द्वारा प्रभुत्वशाली व्यवहार अपनाया गया तो बालक निश्चय ही शांत एवं निर्विरोधी प्रवृत्ति का बनेगा। यदि बालक को अपनी बात पूरी तरह कहने का मौका माता पिता नहीं देते तथा बात बात पर उसे मारते पीटते हैं, डराते धमकाते हैं, डांटते फटकारते हैं तो बालक अंतर्मुखी स्वभाव वाला होता है। यदि बालक की परवरिश ऐसे परिवार में हुई है जहां उसकी देखभाल अच्छे तरह से की गई है, उसे अपनी मन की बात कह देने का पूरा मौका मिलता है, उसे पूरे लाड प्यार से पाला पोषा गया है तथा सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार करना सिखाया जाता है तो वह निश्चित ही बहिर्मुखी स्वभाव वाला व्यक्ति बनता है। अतः स्पष्ट है कि प्रारंभिक सामाजिक अनुभवों का व्यक्तित्व निर्माण एवं विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। नंबर 3, सामाजिक सहभागिता का प्रभाव, इफेक्ट ऑन सोशल पार्टिसिपेशन। प्रारंभिक सामाजिक अनुभवों का सामाजिक सहभागिता पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यदि बालक के प्रारंभिक सामाजिक अनुभव सुखद एवं प्रसन्नतादायी होते हैं तो वह चंचल, उत्साही, कुशाग्र बुद्धि वाला एवं सक्रिय बालक बनता है तथा सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। इसके विपरीत यदि बालक का प्रारंभिक सामाजिक अनुभव सुखद नहीं होता तो बालक सामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं लेता है। वह विद्यालय में भी अंतिम बेंच पर बैठना पसंद करता है। वह सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से कतराता है। उसकी कोशिश यही रहती है कि वह शिक्षक की नज़रों से सदैव बचा रहे ताकि वह प्रश्नों के उत्तर देने से बच जाए। नंबर 4, व्यवहार प्रतिमानों पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न ऑफ बिहेवियर। बालक के जीवन के प्रारंभिक काल में जो सामाजिक व्यवहार प्रतिमान एक बार बन जाते हैं वे जीवन पर्यंत तक बने रहते हैं। आक्रामकता, क्रोध, ईर्ष्या, त्याग, बलिदान, प्रभुत्व, आश्रितता, स्वतंत्रता, उदारता, निडरता, मित्रता, सहयोग, सहानुभूति आदि गुणों की शुरुआत जीवन के प्रारंभिक काल से ही हो जाती है। अतः इसके आधार पर यह निश्चित हो जाता है कि बालक बड़ा होकर सामाजिक, असामाजिक अथवा समाज विरोधी बनेगा, वह नेता बनेगा या अनुसरणकर्ता। अर्ली चाइल्ड एक्सपीरियंसेस डिटरमाइन whether द चाइल्ड विल बिकम प्रेडोमिनेंटली सोशल, अनसोशल आर एंटी सोशल एंड whether द चाइल्ड विल बिकम अ लीडर आर अ फॉलोअर। पृष्ठ संख्या 198, नंबर 5, सामाजिक अभिवृत्तियों की अनुकूलता। बाल्यावस्था में एक बार जो सामाजिक अभिवृत्तियां बालकों में उत्पन्न हो जाती हैं वे लंबे समय तक बनी रहती हैं। इन अभिवृत्तियों में परिवर्तन करना इतना आसान होता है। वे बालक जिनका संपर्क समाज के लोगों से अधिक रहता है तथा जो सामाजिक अपेक्षाओं प्रत्याशाओं के अनुसार कार्य करते हैं उनका सामाजिक समायोजन भी अच्छा होता है। वे यह आसानी से समझ जाते हैं कि भिन्न भिन्न विचार एवं व्यवहार वाले लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार कब और किस तरह करना चाहिए ताकि समाज के लोग उसे स्वीकार करें, समाज में उसे मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा मिले, समाज के लोग उसे पसंद करें, साथ ही उसकी लोकप्रियता समाज में हो। प्रारंभिक सामाजिक अनुभवों का प्रभाव एक नज़र में। सामाजिक अनुभवों का प्रभाव, सामाजिक प्रत्याशाओं का प्रभाव, व्यवहार प्रतिमानों का प्रभाव, सामाजिक सहभागिता, सामाजिक अभिवृत्तियों की अनुकूलता, सामाजिक स्वीकार्यता, व्यक्तित्व विकास। सामाजिक विकास की कसौटियां, क्राइटेरिया ऑफ सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास की कसौटियों से तात्पर्य उन विशेषताओं एवं लक्षणों से है जिसके आधार पर यह जाना जा सकता है कि बालक का सामाजिक विकास किस तरह से वह किस दिशा में हो रहा है। कसौटी अंग्रेजी भाषा के क्राइटेरिया शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है अ स्टैंडर्ड ऑफ जजिंग। इसे मानदंड भी कहते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक इसे सामाजिक विकास के आयाम की संज्ञा भी देते हैं। पृष्ठ संख्या 199, सामाजिक विकास की प्रमुख कसौटियां निम्नांकित हैं जिसके आधार पर सामाजिक विकास को मापा जा सकता है। ये कसौटियां हैं, नंबर एक, सामाजिक प्रौढ़ता, सोशल मैच्योरिटी। सामाजिक प्रौढ़ता सामाजिक विकास को मापने की एक महत्वपूर्ण कसौटी है जिसके आधार पर जाना जा सकता है कि बालक का विकास सही दिशा में हो रहा है अथवा नहीं। सामाजिक प्रौढ़ता को सामाजिक परिपक्वता भी कहा जाता है। सामाजिक प्रौढ़ता का सामान्य अर्थ है समाज के नियमों, मूल्यों, आदर्शों, अभिवृत्तियों, संस्कृतियों, परंपराओं, धार्मिक रीति रिवाजों आदि की प्रौढ़ता। यदि बालक सामाजिक प्रौढ़ता के अनुसार व्यवहार करता है तो इसका मतलब है कि उसका विकास सही दिशा में हो रहा है तथा बालक सामाजिक दृष्टि से पूर्ण रूप से परिपक्व है। मगर ध्यान रहे, बालकों में सामाजिक प्रौढ़ता एकाएक उत्पन्न नहीं होता है, बालकों को सिखाना पड़ता है, उन्हें प्रशिक्षण देना पड़ता है कि समाज के लोगों के समक्ष किस प्रकार का और कैसे व्यवहार करना चाहिए। उम्र के विभिन्न पड़ाव व सामाजिक विकास की प्रौढ़ता पर परिपक्वता आती है। आयु के विभिन्न स्तरों पर इनमें परिवर्तन भी आता है। बालकों की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनमें प्रौढ़ता आती है। जैसे 2 से 2.5 वर्ष का छोटा बालक अपनी बात को मनवाने के लिए रोने चिल्लाने, गुस्सा करने, जमीन पर लोटने पोटने, माता का आंचल खींचने जैसे व्यवहार प्रतिमान को अपनाता है, परंतु वही बालक किशोर होने पर अपनी बात को दूसरों के समक्ष बड़ी ही शालीनता से रखता है। यदि उसे बात मनवाने में कहीं बाधा उत्पन्न होती है तो वह सुलझे हुए तरीके से तर्क पेश करता है। वही बालक जब प्रौढ़ हो जाता है तो दूसरे लोगों को सामाजिक नियमों, आदर्शों, दर्शनों, रीति रिवाजों की पालना के लिए निर्देश देने लगता है। ऐसा आयु के विभिन्न स्तरों पर परिवर्तन के कारण होता है। बहिर्मुखी बालकों में सामाजिक प्रौढ़ता अंतर्मुखी बालकों की अपेक्षा जल्दी आती है। नंबर 2, सामाजिक समायोजन, सोशल एडजस्टमेंट। सामाजिक समायोजन के आधार पर बालकों के सामाजिक विकास को आसानी से पहचाना जा सकता है। सामाजिक समायोजन से तात्पर्य व्यक्ति की उस योग्यता से है जिसके माध्यम से वह अपने आप को समूह में तत्परता से समायोजित कर लेता है तथा जिसके द्वारा उसकी विशिष्ट पहचान बनती है। सोशल एक्सेप्टेंस मीन्स द सक्सेस विच पीपल एडजस्ट टू अदर पीपल इन जनरल एंड टू द ग्रुप विथ विच दे आर आइडेंटिफाइड। जिन बालकों का सामाजिक समायोजन जितना ही अच्छा होता है उनका सामाजिक विकास भी उतना ही अच्छा होता है। वह यह अच्छी तरह से जानता है कि अपने अभिभावकों, शिक्षकों, मित्रों, आगंतुकों एवं अजनबियों के साथ किस तरह से व्यवहार करें ताकि लोग उसे स्वीकार करें। कुछ लोग प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दूसरे लोगों के साथ अच्छा सामाजिक समायोजन स्थापित कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग अनुकूल परिस्थितियों में भी सामाजिक समायोजन स्थापित नहीं कर पाते हैं। सामाजिक समायोजन का बालकों के संवेगों से भी गहरा नाता रिश्ता है। वे बालक जो नकारात्मक संवेगों से ग्रस्त रहते हैं उनका सामाजिक समायोजन गड़बड़ा जाता है। भय, क्रोध, चिंता, आक्रामकता, द्वेष, ईर्ष्या आदि नकारात्मक संवेग हैं जो सामाजिक विकास के सबसे बड़े दुश्मन हैं। वहीं धनात्मक संवेगों की अनुभूति करने वाले बालकों का सामाजिक समायोजन अच्छा होता है। हंसमुख, मृदुभाषी, सहयोगात्मक रवैया अपनाने वाले बालकों का सामाजिक समायोजन अच्छा होता है। इसी प्रकार बहिर्मुखी बालकों का सामाजिक समायोजन अंतर्मुखी बालकों की तुलना में अच्छा होता है। पृष्ठ संख्या 200, नंबर 3, सामाजिक अनुरूपता, सोशल कन्फर्मिटी। सामाजिक अनुरूपता का अर्थ है समाज के मूल्यों, नियमों, मानकों, रीति रिवाजों, परंपराओं आदि के अनुरूप व्यवहार करना। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक समुदाय अथवा समाज के अपने कुछ नियम, रीति रिवाज, लोकाचार, संस्कृति, मूल्य, दर्शन एवं प्रथाएं होती हैं। प्रत्येक समाज समुदाय अपने सदस्य से यह आशा करता है कि वह बड़ा होकर इन मूल्यों नियमों एवं रीति रिवाजों को स्वीकार करेगा और उसी के अनुसार व्यवहार करेगा। बड़ा होकर बालक जितना अधिक सामाजिक मूल्यों और दर्शनों अभिवृत्तियों को अपनाता है उतना ही सामाजिक अनुरूपता आती है तथा सामाजिक संबंधों में प्रगाढ़ता आती है। अतः स्पष्ट है कि सामाजिक अनुरूपता एवं सामाजिक विकास में गहरा एवं धनात्मक संबंध है। नंबर चार, सामाजिक अंतःक्रियाएं, सोशल इंटरैक्शंस। सामाजिक अंतःक्रियाओं से आशय है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच पारस्परिक प्रक्रियाएं अर्थात आचारों विचारों का आदान प्रदान करना। सामाजिक अंतःक्रियाएं भी मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, नंबर एक संगठनात्मक एवं नंबर दो विघटनात्मक। नंबर एक संगठनात्मक सामाजिक अंतःक्रियाएं, ऑर्गेनाइजेशनल सोशल इंटरेक्शंस। संगठनात्मक सामाजिक अंतःक्रियाओं से सामाजिक संबंधों को मजबूती एवं बल मिलता है। ये सामाजिक ढांचे को मजबूत बनाती हैं। सहयोग, सहानुभूति, सहिष्णुता, मित्रता, दया, क्षमा, त्याग, बलिदान, सामुदायिकता की भावना आदि संगठनात्मक सामाजिक अंतःक्रियाएं हैं। यदि बालकों में संगठनात्मक सामाजिक अंतःक्रियाओं की बहुलता है तो निश्चित ही इसका सामाजिक विकास अच्छा होता है। नंबर दो, विघटनात्मक सामाजिक अंतःक्रियाएं। विघटनात्मक सामाजिक अंतःक्रियाएं सामाजिक संबंधों में दरार एवं खटास उत्पन्न करती हैं। तनाव, संघर्ष, झूठ बोलना, चोरी करना, दूसरों को परेशान करना, ये सभी विघटनात्मक सामाजिक अंतःक्रियाएं हैं जो दोषपूर्ण सामाजिक विकास की ओर संकेत करती हैं। बालकों का सामाजिक मूल्यांकन इस आधार पर आसानी से किया जा सकता है कि उसकी सामाजिक अंतःक्रियाएं संगठनात्मक हैं या विघटनात्मक। यदि बालकों में विकास संगठनात्मक सामाजिक अंतःक्रियाओं की मात्रा अधिक है तो उसका स्वस्थ सामाजिक विकास होता है, परंतु यदि बालक में विघटनात्मक सामाजिक अंतःक्रियाओं की मात्रा अधिक है तो निश्चय ही उसका सामाजिक विकास नकारात्मक दिशा में जा रहा होता है, जो एक चिंतनीय विषय है। पृष्ठ संख्या 201, नंबर 5, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना, सोशल पार्टिसिपेशन। बालकों के सामाजिक विकास को ज्ञात करने में सामाजिक सहभागिता का भी अति महत्वपूर्ण स्थान है। बालक सामाजिक कार्यक्रमों, उत्सवों, पर्वों, त्योहारों में कितना अधिक और किस सीमा तक भाग लेता है और किस प्रकार की सामाजिक भूमिका अदा करता है, इस बात पर भी सामाजिक समायोजन निर्भर करता है। बालकों में 1.5 से 2 वर्ष की आयु से ही सामाजिक सहभागिता का गुण विद्यमान होता है। 1.5 से 2 वर्ष के बालक में दूसरे बच्चों के साथ बातचीत करने, खेलने, घूमने आदि की रुचि विकसित हो जाती है। 6 से 7 वर्ष का बालक होली, दशहरा, दीपावली जैसे त्यौहार का आनंद खूब मस्ती से उठाने लगता है। अब वह दीपावली के लिए दिए को सजाने, फुलझड़ियों को खरीदने, अपने पटाखे को दूसरों के साथ हिल मिलकर छोड़ने का काम सीखता है। वह खेल खेल में ही दूसरे बालकों से समाज के अनेक मानकों, नियमों, मूल्यों, दर्शनों एवं रीति रिवाजों को सीख जाता है। इसी प्रकार 7 से 8 वर्ष का बालक होलिका दहन के लिए लकड़ी कंडा इकट्ठा करता है तथा घर घर जाकर चंदा मांगता है। इसी प्रकार वह सामाजिक उत्सवों में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। बालक जितना ही अधिक सामाजिक उत्सवों एवं कार्यक्रमों में भाग लेता है उसे उतना ही सीखने का अवसर प्राप्त होता है। अतः स्पष्ट है कि स्वस्थ एवं उत्तम सामाजिक विकास के लिए सामाजिक सहभागिता का महत्वपूर्ण योगदान है। सामाजिक विकास के प्रतिमान, पैटर्न ऑफ सोशल डेवलपमेंट। शारीरिक, मानसिक, गामक एवं संवेगनात्मक विकास की तरह ही सामाजिक विकास के भी अपने कुछ प्रतिमान होते हैं। इन प्रतिमानों का विकास भी एकाएक नहीं होता है, बल्कि कदम दर कदम होता है। बालकों में सामाजिक व्यवहारों के विकास क्रमबद्ध तरीके से होते हैं, जिसका विस्तृत अध्ययन सामाजिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में किया गया है। अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि बालक चाहे जिस किसी भी समाज, समुदाय या संस्कृति में पले बढ़े हों, उनमें सामाजिक विकास के प्रतिमान समान रूप से पाए जाते हैं। जन्म के बाद शैशवावस्था से ही सामाजिक विकास की शुरुआत हो जाती है, जब वह अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करने लगता है। बचपनावस्था में सामाजिक विकास के अंकुर फूटने लगती हैं, जो वयस्क होते होते पूर्ण रूप से प्रस्फुटित हो जाती हैं। अब वह अपने विचारों को एवं सामाजिक मूल्यों को अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करने लगता है। इस प्रकार सामाजिक विकास के प्रतिमान जीवन के विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न गति से होते रहते हैं। प्रत्येक आयु स्तर पर एक निश्चित मात्रा में सामाजिक विकास होता है। बालकों की सामाजिक क्रियाओं के प्रति अभिवृत्तियाँ, रुचियाँ एवं साथियों का चुनाव के भी प्रतिमान होते हैं, जिसके आधार पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि एक निश्चित आयु स्तर पर बालक का सामाजिक विकास किस प्रकार का होगा। बालकों में 4 से 5 माह की अवस्था में सामाजिक विकास होना प्रारंभ हो जाता है, परंतु तब यह अत्यंत ही अस्पष्ट होता है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। जब बालक विद्यालय पढ़ने जाता है, तब उसका संपर्क विद्यालय के साथियों से होता है। वह उनके साथ खेलता है, पढ़ता है और विभिन्न तरह की बातें सीखता है, अतः उसका समाजीकरण तीव्र गति से होता है। इसलिए इस अवस्था को समाजीकरण की अवस्था भी कहते हैं। किशोरावस्था तक बालकों में सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है, क्योंकि बालक विद्यालय एवं महाविद्यालय में भिन्न भिन्न लोगों के संपर्क में आता है। बालकों के आयु के अनुसार सामाजिक विकास के प्रतिमान में अंतर भी देखने को मिलता है। 2 से 3 वर्ष का बालक आत्म केंद्रित होता है, वही बालक 6 से 7 वर्ष का होते होते सहयोगी प्रवृत्ति का हो जाता है। किशोरावस्था तक बालक में सहयोग, मित्रता, उदारता एवं सहिष्णुता का गुण विकसित हो जाता है। अब वह सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगता है। उसकी सामाजिक सहभागिता भी बढ़ जाती है। जिन बालकों को जितना अधिक सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिलता है, उनमें उतना ही अधिक सामाजिक विकास होता है। प्रतिभाशाली एवं कुशाग्र बुद्धि के बालकों में सामाजिक विकास मंदगति के बालकों की अपेक्षा अधिक होता है। प्रत्येक माता पिता एवं शिक्षकों के लिए सामाजिक विकास के प्रतिमान को जानना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि इसके आधार पर यह आसानी से ज्ञात हो सकेगा कि बालकों की सामाजिक व्यवहार एवं सामाजिक विकास प्रतिमान सही दिशा में हो रहा है या नहीं। यदि नहीं, तो बालकों को प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन दिया जा सकता है। उन्हें सिखाने के लिए प्रयास किया जा सकता है, ताकि बालकों में इच्छित सामाजिक अभिवृत्तियां और सामाजिक कौशलों को उत्पन्न किया जा सके। बालक को असामाजिक तथा समाज विरोधी होने से रोका जा सकता है। जब बालक स्कूल जाने लगता है, तो उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह विद्यालय में शिक्षकों की आदेश की पालना करे, अपने साथियों के साथ घुल मिल कर रहेगा और कोई ऐसा नकारात्मक व्यवहार नहीं करेगा जिससे कि उसका सामाजिक समायोजन बाधित हो। सामाजिक विकास के विभिन्न अवस्थाओं में बालकों के सामाजिक विकास के प्रतिमानों को दर्शाया गया है। बचपनावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था तथा वयः संधि अवस्थाओं में सामाजिक विकास का विस्तृत वर्णन किया गया है। बालकों में एक बार जो व्यवहार प्रतिमान बाल्यावस्था में विकसित हो जाते हैं, वे लंबे समय तक बने रहते हैं। अतः माता पिता एवं शिक्षकों का परम दायित्व है कि वे सामाजिक विकास प्रतिमानों को समझें और बालकों के चौमुखी व्यक्तित्व विकास के लिए उसी प्रकार से व्यवहार करें, बालकों को उचित प्रशिक्षण एवं सही दिशा निर्देश दें। विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्टेज। सामाजिक विकास एक क्रमिक क्रिया है जो जीवन के विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न गति से होता है तथा जीवन पर्यंत चलता रहता है। यहाँ जीवन के विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास का वर्णन किया गया है। पृष्ठ संख्या 203, शैशवावस्था एवं बचपनावस्था में सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी एंड बेबीहुड। जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक। वह तो केवल एक जैविकीय प्राणी होता है, जिसे अपनी हर एक आवश्यकता के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। उस समय परिवार एवं समाज के लोग ही उसका देखभाल एवं पालन पोषण करते रहते हैं, परंतु जन्म के कुछ सप्ताह बाद से ही उसकी अनुक्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। 1.5 से 2 माह का शिशु वातावरण की केवल तीव्र उत्तेजनाओं के प्रति ही प्रतिक्रिया करता है, परंतु वह मनुष्य की बोली एवं दूसरे प्रकार की बोली में अंतर नहीं कर पाता है। शिशु की प्रथम सामाजिक प्रतिक्रियाएं वयस्कों के प्रति ही होती हैं, विशेषकर उनमें जो आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। इसलिए शैशवावस्था में शिशु के सामाजिक विकास की अवस्था को सचेतनता की आयु भी कहते हैं। सबसे पहले शिशु अपनी माँ की आवाज, बोली एवं आहट को पहचानता है, क्योंकि वही उसके संपर्क में ज्यादा रहती हैं। 2.5 से 3 माह का शिशु माँ की आहट एवं आवाज को पहचानता है। अब वह माँ को देखकर मचलने लगता है और उसकी गोद में आना चाहता है। रोता हुआ बालक माता के गोद में आते ही चुप हो जाता है। 3 माह के अंत तक बालक में मुस्कुराने की प्रक्रिया देखी जा सकती है। जब माता बालक को गोदी में लेकर हंसती, मुस्कुराती, पुचकारती एवं दुलारती है, तो बालक भी हंसने मुस्कुराने लगता है। जे कोच ने अपने अध्ययन में पाया कि 3 माह के शिशु में समाजीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है, परंतु तब उसका व्यवहार संघचारी, झुंड में रहने वाला प्रवृत्ति का होता है। अब उसकी आंखों की पेशियां इतनी विकसित हो जाती हैं कि वहां घुमाकर वस्तुओं एवं लोगों को देख सकता है तथा उनकी गतियों का निरीक्षण करने लग जाता है। उनकी श्रवण शक्ति भी इतनी विकसित हो जाती है कि वह विभिन्न ध्वनियों में अंतर समझने लगता है। वह माँ की आवाज़ एवं रेडियो या टेलीविजन की आवाज़ में अंतर समझ जाता है। अब उसे यह भी पता चल जाता है कि कमरे में वह अकेला ही है, इसलिए रोक रोककर दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। वह यह भी जान सकता है कि रोने से दूसरे लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित हो जाता है और यहीं से उसकी सामाजिकता के विकास की कड़ियां प्रारंभ हो जाती हैं। 4 माह के बालक को जब गोद में उठाया जाता है तो वह पूर्वानुमानित समायोजन करने लग जाता है। अब वह कई लोगों में से कुछ अपने खास लोगों को पहचानने लगता है, विशेषकर उन्हें जो शिशु रोज खिलाते हैं, हंसाते हैं, झूला झुलाते हैं, नहलाते हैं और उसके साथ अधिक समय व्यतीत करते हैं। वह उस व्यक्ति को देखते ही किलकारियां भरने लगता है, हाथ पांव पटकने लगता है तथा हंसने मुस्कुराने की अनुक्रिया करने लगता है। परंतु यदि वह प्रिय व्यक्ति की गोद उसे नहीं उठाता तो और बातचीत नहीं करता तो वह रोने लगता है। 5 से 6 माह के बालकों में सामाजिक विकास और अधिक अस्पष्ट हो जाता है। पृष्ठ संख्या 204। इस अवस्था तक वह क्रोधपूर्ण एवं मधुर वाणी में अस्पष्ट अंतर समझने लगता है। अब वह यह समझ जाता है कि माँ ने उसे क्रोध से डांटा है और डांटने पर वह फफक फफक कर रोने लगता है। वहीं मधुर वाणी व दुलारने की स्थिति में वह हंसकर तथा मुस्कुराकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। अब वह अपरिचितों को देखकर डरने लगता है तथा परिचितों की गोदी में जाना चाहता है। वह अपने माता पिता एवं अन्य परिचितों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बिस्तर पर हाथ पांव मारता है, किलकारियां भरता है तथा विभिन्न प्रकार की आवाजें करता है। वह इस प्रकार का हाव भाव प्रदर्शित करता है कि माता उसे झट से आकर गोदी में उठा ले। गोद में उठाए जाने पर वह माता का बाल नोचता है, बिंदी नोचता है और चश्मे को झपट्टा मारकर खींच लेता है। 7 से 9 माह का बालक दूसरों की आवाज एवं हाव भाव को अस्पष्टतः समझने लगता है। अब वह दूसरों की बोली का अनुकरण करने लगता है। बा बा मा मा ना ना जैसे शब्दों का उच्चारण करना सीख जाता है। वह दूसरे बच्चों के बाल, कपड़े, नाक, चेहरे आदि को छूकर एवं खींचकर उसके बारे में जानने का प्रयास करता है। वह दूसरे बच्चों के साथ खेलने लग जाता है तथा माता एवं अपने खास परिचितों को देखकर उसके पास घुटनों के बल भागकर चला जाता है तथा अपरिचितों से दूर डरकर भागता है। एक वर्ष का बालक अजनबियों को देखकर पीछे की ओर भागने लगता है। जब अजनबी उसे गोद में उठाना चाहते हैं तो वह जोर जोर से रोने चिल्लाने लगता है। जो चीज़ बालक को पसंद नहीं होती है उसे वह ना ना कहकर मना कर देता है। वह दूसरे बच्चों की आवाज़ों का नकल करता है और उसी तरह का मुंह बनाता है। 15 माह का बालक अधिकांश समय तक अपने ही लोगों जैसे माता पिता, दादा दादी, भाई बहन एवं अन्य परिचितों के साथ रहना पसंद करता है और उनके अनेक व्यवहारों का अनुकरण करने लग जाता है। फ्रॉम द एज ऑफ 15 मंथ्स बेबीज शो एन इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन एडल्ट्स एंड अ स्ट्रांग डिजायर टू बी विद देम एंड इनिमिएट देम ई बी हर लव। 1 वर्ष का बालक स्वकेंद्रित सेल्फ सेंटर्ड होता है। इस समय यदि उसका खिलौना छीनकर दूसरे बालक को दे दिया जाए तो वह रोने चिल्लाने जमीन पर लोटने पोटने लगता है। इतना ही नहीं, बच्चों में आपस में ही खिलौने को लेकर छीना झपटी भी शुरू हो जाती है। 1.5 से 2 वर्ष का बालक नहाने, कपड़े बदलने एवं घर के छोटे छोटे कार्यों में माता पिता का हाथ बटाने लगता है। 2 वर्ष के अंत तक बालक में आपसी सामाजिक संबंधों का विकास तीव्र गति से होने लगता है। अब वे दूसरे बच्चों के साथ मिलजुल कर खेलने लग जाते हैं, अतः उनका खेल सहयोगात्मक खेल होता है। वे दूसरे समय दूसरे बालकों के साथ भी अपने खिलौने को शेयर करते हैं। पृष्ठ संख्या 205, बचपनावस्था की कुछ विशिष्ट सामाजिक व्यवहार, सम स्पेशल सोशल बिहेवियर ऑफ बेबीहुड। नंबर 1, अनुकरण इमिटेशन। बालक अनुकरण द्वारा ही सामाजिक प्राणी बनता है। 12 से 15 माह के शिशुओं में अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। सबसे पहले बालक मुखाकृतियों का, फिर हाव भाव का, फिर भाषा एवं गतियों का और सबसे अंत में संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान का अनुकरण करना सीखता है। नंबर 2, आश्रितता डिपेंडेंसी। जन्म से लेकर 2 वर्ष के बालकों में आश्रितता की प्रवृत्ति पाई जाती है। जन्म के समय वह इतना निर्बल एवं असहाय होता है कि यदि उसकी देखभाल समुचित ढंग से नहीं की जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में 50 से 60% नवजात शिशु अपनी पहली वर्षगांठ मनाने से पूर्व ही मृत्यु की गोद में सदा के लिए सो जाते हैं। 3 से 4 माह के बालक को यदि कमरे में अकेला छोड़ दिया जाए तो वह रोने लगता है। इसका मुख्य कारण है कि बालक दूसरों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। जब उसे गोद में उठाया जाता है तो वह गोदी में आकर माता के छाती से चिपट जाता है। 9 से 12 माह का बालक अपने प्रियजनों की अंगुली पकड़कर चलना चाहता है। फिर जिन बालकों पर जितना अधिक ध्यान दिया जाता है वे उतना ही अधिक आश्रित हो जाते हैं। नंबर 3, शर्मीलापन शाइनेस। बचपनावस्था का एक प्रमुख व्यवहार है शर्मीलापन। 11 से 12 माह के बालकों में शर्मीलापन की प्रवृत्ति पाई जाती है। वह अपरिचितों को देखकर शर्माने की क्रियाएं करने लगता है। वह दूसरों के समक्ष जाने, बातचीत करने, कविता सुनाने, गाना गाने से शर्माता है। नंबर 4, ध्यानाकर्षण अटेंशन सीकिंग। बालकों में बचपन से ही ध्यानाकर्षण की प्रवृत्ति पाई जाती है। वे दूसरों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए ही रोते चिल्लाते हैं, जमीन पर लोटते पोटते हैं, अपने वस्त्रों एवं बालों को नोचते हैं तथा जोर जोर से विचित्र प्रकार की आवाजें निकालते हैं। वे दूसरे बच्चों को मारते पीटते हैं। उनके मुंह, नाक, कान, बाल, चेहरा एवं कपड़ों को झपट्टा मारकर खींच लेते हैं। उनके खिलौने को छीन लेते हैं। उन्हें जिस काम के लिए मना किया जाता है उसी कार्य को बार बार करके दूसरे लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। नंबर 5, ईर्ष्या रिवलरी। छोटे बालकों में ईर्ष्या का संवेग भी पाया जाता है। लगभग 7 से 9 माह की आयु में ही बालकों में ईर्ष्या के भाव देखे जा सकते हैं। जब उसकी माता किसी दूसरे बालक को गोद लेकर खिलाती है, दुलारती है, पुचकारती है तो बालक ईर्ष्या की ज्वाला में जल उठता है। उसके भीतर ईर्ष्या की अग्नि धधकने लगती है। वह कुछ उस बालक को अपनी माता की गोद में उतारने के लिए रोने चिल्लाने लगता है, जमीन पर लोटने पोटने लगता है। वह बालक के नाक कान बाल मुंह को नोच लेता है तथा उसके कपड़े खींचने लगता है। वह तब तक इस प्रकार की हरकतें करता रहता है जब तक कि माता उस बालक को गोदी में नहीं उतार दे। इसके अतिरिक्त तो दूसरे बालकों को खिलौना दिए जाने पर भी वह ईर्ष्या के संवेग को प्रदर्शित करने लगता है। पृष्ठ संख्या 206, नंबर 6, अवरोधी व्यवहार, रेजिस्टेंस बिहेवियर। लगभग 1 से 1.5 वर्ष की अवस्था में शिशुओं में अवरोधी व्यवहार की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। वह रोकर शरीर को कड़ा करके अथवा आज्ञा का उल्लंघन करके अवरोधी व्यवहार को प्रदर्शित करता है। ई.बी. हरलॉक ने इस संदर्भ में भी लिखा है, ड्यूरिंग द मिडल ऑफ सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ रेजिस्टेंस बिहेवियर बिगिंस। इट इज एक्सप्रेस्ड बाई टेंसिंग द बॉडी, क्राइंग एंड रिफ्यूजल टू ओबे अनलेस बेबीज आर गिवेन अपॉर्चुनिटीज टू बी इंडिपेंडेंट। रेजिस्टेंस बिहेवियर यूजली लीड्स टू निगेटिविज्म। नंबर 7, निषेधात्मक व्यवहार, निगेटिविज्म। लगभग 1 वर्ष की अवस्था में ही बालकों में निषेधात्मक व्यवहार देखने को मिलता है। यदि उसे कोई चीज पसंद नहीं आती तो उसे ना ना करके या मुंह फेर कर मना कर देता है। 13 से 14 माह के शिशु को जिस चीज के लिए मना किया जाता है वह उसी चीज को लेने की जिद करता है। उसे जिस कार्य करने के लिए मना किया जाता है वह उन्हीं कार्यों को बार बार करता है। इससे उसे अत्यंत खुशी एवं असीम आनंद की प्राप्ति होती है। आज्ञाओं का उल्लंघन करते समय वे खिलखिलाकर हंसते हैं। नंबर 8, अपनत्व का व्यवहार, अटैचमेंट बिहेवियर। बालकों में 5 से 6 माह की अवस्था से ही अपनत्व का व्यवहार प्रारंभ हो जाता है। माता जब गोद में बालक को लेकर खिलाती है, दुलारती है, पुचकारती है तो वह भी हंसने मुस्कुराने लगता है और अपनी माता से प्यार करने लगता है। ऐसा अपनत्व के व्यवहार के कारण ही होता है। नंबर 9, सहयोग कोऑपरेशन। 1 से 1.5 वर्ष के बालकों में जहां एक ओर ईर्ष्या एवं लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति पाई जाती है, वहीं 2 वर्ष की अवस्था को प्राप्त करते करते बालक में सहयोग की भावना का विकास होने लगता है। अब वह अपने खिलौने को दूसरे बच्चों के साथ मिल बांट कर खेलता है। वह माता पिता के छोटे मोटे कार्यों में भी सहयोग करता है। वह बड़ों के साथ भी सहयोगात्मक रवैया अपनाता है। नंबर 10, स्वप्रेमी, सेल्फ लव्ड। बचपनावस्था में बालक में स्वयं के प्रति प्रेम पाया जाता है। वह अपनी माता से लेकर घर के सभी चीजों पर केवल अपना ही अधिकार समझता है। यदि कोई व्यक्ति उसकी माता को छू लेता है तो वह उस व्यक्ति को नोचने खसोटने के लिए तैयार हो जाता है। इसी प्रकार यदि उसके खिलौने या कपड़े को छीनकर दूसरे बच्चे को दे दिया जाता है तो वह रोने चिल्लाने लगता है तथा खिलौने को छीनने का भरपूर प्रयास करता है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि बालकों में बचपन से ही समाजीकरण की योग्यता पाई जाती है। आवश्यकता इस बात की है कि इसके विपरीत विकास में माता पिता एवं परिवार के सदस्य कितना ध्यान देते हैं। यदि बालक को जन्म के बाद से ही सामाजिक संपर्कों से दूर रखा जाएगा तो उसका सामाजिकरण संभव नहीं है। पृष्ठ संख्या 207, बचपनावस्था में सामाजिक विकास, मात्र एक नज़र में। अपनत्व का व्यवहार, सहयोग की भावना, अवरोधी व्यवहार, ध्यानाकर्षण, आश्रितता, स्वप्रेमी, निषेधात्मक व्यवहार, ईर्ष्या, शर्मीलापन, अनुकरण। पूर्व बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। 2 से 6 वर्ष की अवस्था में को पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है। इस अवस्था को प्रीगैंग एज भी कहते हैं। इस अवस्था में सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है क्योंकि अब बालक का दायरा न केवल घर परिवार तक ही सीमित रहता है बल्कि वह पास पड़ोस एवं विद्यालय के बालकों के संपर्क में भी आता है। वह आस पड़ोस के बालकों के साथ खेलना कूदना प्रारंभ कर देता है। अब वह विद्यालय में दूसरे बालकों के साथ तथा खेल के साथियों के साथ समायोजन करना सीखता है। पूर्व बाल्यावस्था के बालकों की प्रमुख विशेषता यह होती है कि वे अधिकांश समय घर से बाहर बिताना चाहता है और दोस्तों के साथ रहना पसंद करता है। वह घर परिवार के सदस्यों के साथ कम से कम समय व्यतीत करना चाहता है। वह खेलने कूदने में इतना मग्न हो जाता है कि उसे स्वयं के खाने पीने की सुध नहीं रहती है। घर से बाहर रहकर बालक विद्यालय में तथा अपने साथियों से समाज द्वारा मान्यता प्राप्त सामाजिक मूल्यों, मानकों, रीति रिवाजों, संस्कृतियों को सीखता है और उन्हें अपने जीवन में अपनाता है। डब्ल्यू एमरिच 1966 ने अपने अध्ययन में यह पाया कि इस अवस्था में बालक में जो सामाजिक अभिवृत्तियां निर्मित होती हैं अथवा वह जिन सामाजिक व्यवहारों एवं मूल्यों को सीखता है वह आगे तक बना रहता है। इनमें बहुत ही कम परिवर्तन देखने को मिलता है। जे बी रैप एवं साथियों ने अपने अध्ययनों में यह पाया कि नर्सरी स्कूल, किंडरगार्टन अथवा डे केयर सेंटर में जाने वाले बालकों में सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। वहाँ बालक अनेक लोगों के संपर्क में आता है। वहाँ उन्हें प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा सही दिशा निर्देश एवं प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही उन्हें सामाजिक अनुभवों को प्राप्त करने का अधिक अवसर मिलता है। फलतः उनका सामाजिक समायोजन अच्छा होता है। 1.5 से 2 वर्ष का बालक अकेले ही खेलना पसंद करता है। वह दूसरे बालकों के साथ अंतःक्रिया कम ही करते हैं। भले ही वहाँ बच्चों की भीड़ ही क्यों नहीं हो, वे केवल एक दूसरे की ओर ताकते हैं तथा उनके खिलौने को छीनने का प्रयास करते हैं। परंतु 3 से 4 वर्ष की अवस्था तक बालकों में समूह में रहकर खेलने की भावना का विकास हो जाता है। अब वे अपने अपने खिलौने से मिलजुल कर खेलते हैं। इस अवस्था में बालकों में कुछ हद तक स्वावलंबन का गुण भी विकसित हो जाता है। साथ ही वह स्वभाव से थोड़ा जिद्दी हो सकता है क्योंकि अब वह हर एक कार्य को अपनी इच्छा से करना चाहता है। 4 वर्ष का बालक दूसरों की बात को मानने लगता है, परंतु वह उन्हीं कार्यों को करना चाहता है जिससे उसे खुशी मिलती है। अब वह अपने पसंद के खिलौनों से खेलता है और मनपसंद कपड़ों को पहनता है। इतना ही नहीं, वह नए पुराने कपड़ों में अंतर भी समझने लगता है। 6 वर्ष के बालकों में कुछ कुछ आक्रामकता का गुण भी पाया जाता है, विशेषकर जब उन्हें छेड़ा जाता है। अध्ययनों से यह भी ज्ञात हुआ है कि इस अवस्था में बालक माता पिता की अपेक्षा अपने मित्रों एवं दूसरे लोगों की बात को अधिक मानते हैं। पूर्व बाल्यावस्था के कुछ विशिष्ट सामाजिक व्यवहार, सम स्पेशल सोशल बिहेवियर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। नंबर 1, आक्रामकता, एग्रेसिवनेस। पूर्व बाल्यावस्था में सभी बालकों में कुछ ना कुछ मात्रा में अवश्य आक्रामकता का गुण पाया जाता है। यद्यपि इसकी शुरुआत तो 2 वर्ष की अवस्था से ही प्रारंभ हो जाती है तथा 5 वर्ष की अवस्था तक अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाती है। इसके बाद आक्रामकता की तीव्रता एवं आवृत्ति दोनों ही कम हो जाती है। बालकों में आक्रामक व्यवहार के कई कारण हैं, जैसे नंबर 1, माता पिता एवं परिवार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की इच्छा। नंबर 2, माता पिता एवं परिवार का तिरस्कारपूर्ण व्यवहार। नंबर 3, पारिवारिक तनाव के कारण बालक में उत्पन्न संवेगात्मक तनाव। नंबर 4, खेलते समय या मनोनुकूल कार्यों में व्यवधान होने पर। नंबर 5, बालक की गलतियों के लिए उसे मारपीट करने या दंडित करने पर। नंबर 6, अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने की प्रबल इच्छा। नंबर 7, माता पिता द्वारा सभी बालकों के साथ असमान व्यवहार करने पर। पृष्ठ संख्या 209। बालक आक्रामक व्यवहार करते समय अनेक निषेधात्मक क्रियाएं करता है, जैसे जोर जोर से चीखना, चिल्लाना, मुट्ठी भींचना, हाथों पैरों को जमीन दीवार पर पटकना, बाल नोचना, अपने से छोटे बच्चों को मारना, पीटना, वस्तुओं को तोड़ना फोड़ना आदि। सियर्स के अनुसार लड़कों में शारीरिक आक्रामकता अधिक पाई जाती है, जबकि लड़कियां मानसिक आक्रामकता अपनाती हैं। लड़कों में आक्रामकता का गुण लड़कियों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। चूंकि आक्रामकता एक निषेधात्मक व्यवहार है, इसलिए इस पर नियंत्रण किया जाना आवश्यक है। इसलिए माता-पिता एवं शिक्षकों का परम कर्तव्य एवं महान दायित्व है कि वे बालकों के साथ इस व्यवहार को हतोत्साहित करें और उस पर अंकुश लगाएं। नंबर दो, झगड़ा एवं मारपीट। झगड़ा एवं मारपीट एक नकारात्मक व्यवहार है जो पूर्व बाल्यावस्था के बालकों में प्रमुख रूप से पाया जाता है। इसकी उत्पत्ति आक्रामकता से ही होती है, परंतु यह आक्रामकता से भिन्न है क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक बालकों की जरूरत होती है। साथ ही झगड़े एवं मारपीट की स्थिति में एक बालक सुरक्षात्मक नीति अपनाता है जबकि दूसरा बालक उच्च श्रृंखल विध्वंसनात्मक प्रवृत्ति को अपनाता है। 3 से 4 वर्ष के बालकों में झगड़ा एवं मारपीट की क्रिया शुरू हो जाती है क्योंकि इस अवस्था तक वह अपने सम्मान के प्रति सचेत हो जाता है। सामूहिक खेलों में भाग लेते समय हर एक बालक दूसरे बालकों पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है, परंतु जब दूसरे बालक उसके निर्देशों आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं तो उनमें झगड़ा एवं मारपीट शुरू हो जाती है। झगड़ा करते समय वे एक दूसरे को मारते पीटते हैं, खिलौने को छीनते हैं, एक दूसरे को नोचते खसोटते हैं, उनके कपड़े को फाड़ देते हैं तथा खिलौना छीनकर दूर फेंक देते हैं अथवा उनके खिलौने को तोड़ देते हैं। वे गंदी गंदी गालियां देते हैं तथा धक्का देकर दूसरों को नीचे गिरा देते हैं। नंबर 3, ईर्ष्या। ईर्ष्या भी एक प्रकार का निषेधात्मक व्यवहार है जो पूर्व बाल्यावस्था के बालकों में पाया जाता है। इसका विकास 3 से 6 वर्ष की अवस्था में होता है। बालक अपने आप को बेहतर, श्रेष्ठ और होशियार सिद्ध करने के लिए ही दूसरे बालकों से ईर्ष्या करते हैं। अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि लगभग 6 वर्ष के बालकों में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास हो जाता है, इसलिए वे दूसरे बालकों से ईर्ष्या करते हैं। यदि एक बालक के पास सुंदर खिलौने, डिजाइनर वस्त्र, सुंदर सुंदर कलात्मक पेंसिलें एवं अन्य वस्तुएं होती हैं तथा दूसरे बालक के पास नहीं होती, तो वह बालक साधन संपन्न बालक की उन वस्तुओं को छूकर देखना चाहता है, उनका उपयोग करना चाहता है, वह भी वैसी ही वस्तुओं को पाने की इच्छा रखता है। फलतः उनमें साधन संपन्न बालक से ही स्वतः ही ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो जाती है। जब बालक पढ़ाई लिखाई, खेलकूद, गृह कार्य एवं अन्य कार्यों में दूसरे बालकों से अपने आप को हीन कम पाता है तो उसमें ईर्ष्या के साथ ही मारपीट एवं लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो जाती है। कपड़े, खिलौने, महंगी वस्तुएं आदि कई कारणों से बालकों में ईर्ष्या का भाव जागृत हो जाता है। पृष्ठ संख्या 210, नंबर 4, चिढ़ाना एवं तंग करना। चिढ़ाना एवं तंग करना एक असामाजिक एवं निषेधात्मक व्यवहार है। यह एक प्रकार का मौखिक आक्रमण है जिसके द्वारा एक बालक दूसरे बालक पर मानसिक प्रहार करता है और उसे क्रोधित करके रुलाकर अपना लक्ष्य प्राप्त करता है। इससे उसे मानसिक संतुष्टि एवं आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। चिढ़ाने की प्रवृत्ति उन बालकों में अधिक पाई जाती है जो असुरक्षा एवं हीन भावना के ग्रस्त होते हैं। असंतुलित बालकों में भी चिढ़ाने की प्रवृत्ति अधिक देखने को मिलती है। अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि लड़कों में चिढ़ाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। नंबर 5, निषेधात्मक व्यवहार, नेगेटिव बिहेवियर। आज्ञा की विपरीत कार्य करना निषेधात्मक व्यवहार कहलाता है। बालकों में निषेधात्मक व्यवहार 18 माह की अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है तथा 5 से 6 वर्ष की आयु तक यह अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। इसके बाद इस व्यवहार में धीरे धीरे कमी आने लगती है, परंतु वयः संधि की अवस्था में पुनः निषेधात्मक व्यवहार में बढ़ोतरी होती दिखाई देती है और पुनः यह एक बार फिर अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर लेता है। अक्सर बालकों में निषेधात्मक व्यवहार उस समय देखने को मिलता है जब उसकी इच्छा पूर्ति नहीं की जाती है अथवा उसके कार्यों में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है। निषेधात्मक व्यवहार की स्थिति में बालक बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं। बार बार बुलाने पर भी वे ना तो कुछ बोलते हैं और ना ही कुछ अच्छा संतोषजनक उत्तर ही देते हैं। वे बातों को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। इतना ही नहीं, वस्तुओं को तोड़ना, फोड़ना, जमीन पर लौटना, अपने से छोटे बच्चों को मारना, जोर जोर से चिल्लाना आदि प्रक्रियाओं द्वारा निषेधात्मक व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। नंबर 6, सहयोग, कोऑपरेशन। पूर्व बाल्यावस्था में बालकों में एक ओर जहां असामाजिक व्यवहार, प्रतिमान, ईर्ष्या, झगड़ालु प्रवृत्ति क्रोध, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, आक्रामकता, आत्मकेंद्रिता, पूर्वाग्रह, नकारात्मकता, चिढ़ाना एवं तंग करना आदि भावनाएं पाई जाती हैं। वहीं दूसरी ओर उनमें सहयोग की भावना का भी विकास होता है। बालक न केवल अपने माता पिता, भाई बहनों एवं परिवार के सदस्यों के प्रति ही सहयोगात्मक रवैया अपनाता है, बल्कि वह समूह के साथियों, विद्यालय में कक्षा के साथियों तथा आस पड़ोस के बालकों के साथ भी सहयोगात्मक व्यवहार करता है। वह खेलते समय अपने खिलौनों से दूसरे बालकों को खिलाता है। यह व्यवहार तब और अधिक स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगता है जब खेलते समय किसी बालक को चोट लग जाती है अथवा उसे मानसिक कष्ट होता है। 3 से 4 वर्ष के बालकों में सहयोग एवं सहानुभूति के लक्षण दिखाई देते हैं। सहयोग का प्रथम लक्षण बालकों में खेलते समय दिखाई देता है, मगर तब उसे सहयोग का अर्थ समझ नहीं आता। खेलते समय यदि किसी बालक को चोट लग जाता है अथवा चोटिल स्थान से रक्त बहने लगता है अथवा खेलते समय बालक जमीन पर गिर जाता है तो दूसरा बालक उसे उठाता है, उसके कपड़े पर लगे धूल को झाड़ता है, खून बह रहा होता है तो रोकने का प्रयास करता है और उसकी सूचना दौड़कर बड़ों को देता है। वह चोटग्रस्त बालक की हर संभव मदद करता है और उसे उसके घर तक छोड़ने जाता है तथा घटना का वृत्तांत उसके माता पिता को भी बताता है। ये सारे लक्षण सहयोग प्रदर्शन के ही उदाहरण हैं। याद रहे, बालक जितना अधिक समय तक दूसरे बालकों के साथ बिताता है उनमें उतना ही अधिक सहयोग का गुण विकसित होता है। 6 से 7 वर्ष का बालक सहयोग के अर्थ एवं विशेषता को थोड़ा थोड़ा समझने लगता है। बालकों के साथ माता पिता जितना अधिक सहयोगात्मक व्यवहार अपनाते हैं, उन्हें प्यार से पालते पोसते हैं, उतना ही जल्दी और अधिक उनमें सहानुभूति का गुण विकसित होता है। इसके अतिरिक्त बालकों की आपस में प्रगाढ़ मैत्री भी सहयोग की भावना को जागृत करने में सहायक सिद्ध होती है। अपने टोली में सर्वाधिक लोकप्रिय बालकों की खूबी यही होती है कि उनमें सहयोग एवं सहानुभूति का गुण पाया जाता है। जिन बालकों के लालन पालन में माता पिता प्रभुत्वशाली विधियां अपनाते हैं, वहां बच्चे अक्सर निषेधात्मक व्यवहार अपना लेते हैं और वे असहयोगी व्यवहार वाले हो जाते हैं। ऐसे बालकों को समाज एवं आस पड़ोस के लोग कम पसंद करते हैं, फलतः उनका सामाजिक समायोजन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है।